आयशा की सच्चाई सामने आ जाने के बाद हर कोई उस पर गुस्सा था। भीड़ का फायदा उठाकर आयशा वहां से भाग गई थी, लेकिन राघव इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। उसने राघव को बेवकूफ बनाया था और उसी की वजह से राघव ने इशिका के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। राघव ने इशिका से माफी मांग ली थी, लेकिन अब उसे आयशा को सबक सिखाना था। पृथ्वी के जरिए राघव को ये पता चला कि आयशा अपने घर पर गई है। इस वक्त वो आयशा को सबक सिखाने के लिए उसके घर जाने लगा। वहां जाने से पहले वो गौतम के पास गया और उसे सिंघानिया विला जाने की बात कही। जिस लड़की ने मेरे साथ खेल खेला है, मैं उसे कुछ भी करके सबक सिखाना चाहता हूँ डैड, मैं सिंघानिया विला जा रहा हूँ, राघव ने गौतम की तरफ देखकर कहा। गौतम ने उसे देखकर सिर हिलाया और उसका मजाक बनाते हुए कहा, अफसोस कि एक मामूली सी लड़की तुम जैसे बिजनेस टाइकून को बेवकूफ बनाकर चली गई। तुम्हें लोगों को पहचानने की काफी समझ है, तुमने यही कहा था ना? बोलते हुए उसने इशिका की तरफ देखा और आगे कहा, ठीक है, फिर ये भी बता दो कि मिस इशिका सिंघानिया तुम्हें कैसी लगती है? क्या लगता है कि उनकी हमारी बेटी की आरा से दोस्ती होने देनी चाहिए या नहीं? गौतम जिस तरह से राघव का मजाक बना रहा था, उसे सुनकर राघव का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। वहीं नैना मित्तल ने अभिमन्यु की तरफ एक नज़र देखा तो सही, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। फिलहाल के लिए राघव ने सिंघानिया विला जाना टाल दिया था। पार्टी पूरी रात चली थी, जिसके बाद सुबह के करीब अभिमन्यु ने बाकी गेस्ट के साथ मित्तल फैमिली को अच्छे से विदा किया। इसी बीच राघव ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया था। जाने से पहले इशिका कियारा को बाय कहने के लिए उसके पास गई। वो पार्किंग एरिया में खड़े थे। कियारा ने एक बच्चे की तरह इशिका का हाथ पकड़ा हुआ था। वो उसके साथ काफी सेफ फील करती थी। कियारा ने इशिका के जाने से पहले उससे कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, कल हम दिल्ली वापस जा रहे हैं, प्लीज हमारे जाने से पहले तुम एक बार मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। उसकी बात सुनकर नैना ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो जैसे आखिरी बार मिल रही हो? आजकल एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान हो गया है। अगर तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी तभी मिस सिंघानिया तुमसे मिलने के लिए आएंगी। कियारा ने उनकी बात पर हामी भरी। इशिका ने कियारा की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसे कियारा अच्छी लगती थी। वो एक प्रिंसेस की तरह थी, जिसे अपने घर वालों ने काफी लाड़ प्यार से पाला था। शायद ऐसी ही जिंदगी इशिका जीना चाहती थी, पर उसके नसीब में ये सब नहीं था। इशिका ने कियारा का हाथ सहला कर कहा, डोंट वरी, कल मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। उसके बाद राघव ने कियारा को गाड़ी में बैठा दिया था। उसके गाड़ी में बैठते ही गौतम ने नैना से कहा, तुम किया के साथ हॉस्पिटल पहुंचो, मैं राघव के साथ सिंघानिया विला जा रहा हूँ। जो भी हुआ उसके बाद मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे भी उस लड़की से बात करनी है। उनकी बातें सुनकर इशिका ने उनकी तरफ आंखें छोटी करके देखा। गौतम और राघव के रवैये से साफ था कि वो आयशा के धोखे को इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाले हैं। इशिका ने कुछ पल सोचा और फिर गौतम से कहा, अच्छा राघव अंकल, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इशिका उनके साथ इसीलिए नहीं जा रही थी कि उसे मामले को संभालना था या मित्तल फैमिली को रोकना था। वो बस राधिका को लेकर चिंतित थी। वो नहीं चाहती थी कि उन सब की वजह से राधिका की तबीयत बिगड़े। वैसे भी आयशा के मामले में उसे संत बनना पसंद नहीं था। हाँ क्यों नहीं, तुम चल सकती हो, राघव ने जवाब दिया। इशिका उनके साथ जाने वाली थी, ये बात अभिमन्यु ने सुन ली थी, क्योंकि वो उसे लेने के लिए वहां आ रहा था। अभिमन्यु ने इशिका से कहा, मैं आपको वहां छोड़ दूंगा, मिस सिंघानिया आपको किसी और के साथ जाने की जरूरत नहीं है। अभिमन्यु के कहते ही पृथ्वी ने उसे याद दिलाते हुए कहा, लेकिन सर हमें एक सेमिनार में जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहले से ही शेड्यूल किया गया था, उसके बाद एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। अभिमन्यु पृथ्वी को मना करता उससे पहले इशिका ने कहा, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर राजवंश, मैं चली जाऊंगी, ये मेरे साथ चली जाएगी और उसके बाद मैं इसे हॉस्पिटल भी ले जाऊंगा। वैसे भी कियारा वहीं पर एडमिट है, राघव ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा। उसने एक नज़र इशिका की तरफ देखा, फिर तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। वहीं अभिमन्यु भी इशिका को देख रहा था। वो अभी भी उसी पार्टी ड्रेस में थी, लेकिन रात भर ना सोने की थकावट उसकी आंखों में नजर आ रही थी। इशिका से अलग होने की बेचैनी से उसका दिल अचानक जोर से धड़का। अभिमन्यु ने खुद को सख्त किया और कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दूंगा, और वैसे भी मिस्टर मित्तल की आईसाइट थोड़ी वीक है, मुझे लगता है कि वो ठीक से देख नहीं पाएंगे और एक्सीडेंट कर देंगे। अभिमन्यु अभी भी राघव की उस बात का मजाक उड़ा रहा था जब उसने अभिमन्यु को अपनी नजरें सही करने और इंसान पहचानने के लिए कहा था। राघव समझ गया था कि अभिमन्यु उसका मजाक बना रहा था। वो चिढ़ते हुए बोला, कम ऑन मिस्टर राजवंश, मित्तल फैमिली इतनी पुअर नहीं है कि उनके पास एक ड्राइवर भी ना हो, और प्लीज आप मेरा मजाक बनाना बंद करेंगे। अभिमन्यु बस इशिका को राघव के साथ जाने नहीं देना चाहता था। वो आगे कुछ कहता तभी रोहन ने कहा, तुम अपनी मीटिंग में जाओ, मैं मिस सिंघानिया को छोड़ दूंगा, वैसे भी मुझे उसी तरफ जाना है।
रोहन नहीं चाहता था कि एक और बहस करके अभिमन्यु और राघव के बीच के रिश्ते बिगड़े। बाकी लोग भी वहां पर मौजूद थे और उन सबके सामने अभिमन्यु ज्यादा जिद की नहीं कर सकता था। उसने बेमन से हां में सिर हिला दिया। ईशिका रोहन की गाड़ी में जाकर बैठ गई। रोहन कार ड्राइव कर रहा था। उसने एक नजर ईशिका की तरफ देखा और फिर अचानक बोला, आखिर तुम्हारा मेरे कजन के साथ रिश्ता क्या है? उसका सवाल सुनकर ईशिका ने भौहें चढ़ाकर उसकी तरफ देखा। ईशिका रोहन को कुछ कहती उससे पहले रोहन खुद ही आगे बोल पड़ा, देखो मैं तुम्हें एक बात अच्छे से समझा देता हूँ कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी हो पर वो शादीशुदा है पिछले 2 साल से और अपनी पत्नी के लिए बहुत लॉयल है। मैं उसकी पत्नी से मिला तो नहीं हूँ लेकिन सुना है वो एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं तुम्हें यही एडवाइस देना चाहूंगा कि उसकी लाइफ में दूसरी औरत बनने की कोशिश मत करना। ईशिका को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी फिर भी उसने सीरियस आवाज में कहा, अच्छा तो तुम्हें पता है क्या कि उसकी लीगल वाइफ कौन है? नहीं, रोहन ने जवाब दिया। मैं और कौन? ईशिका ने बिल्कुल सामान्य तरीके से जवाब दिया। उसने अपने डॉक्टर मर्चेंट होने की सच्चाई भी रोहन को इसी तरह बताई थी पर अफसोस रोहन ने ना तो उस दिन उसका यकीन किया था और ना ही अब वो इस बात पर यकीन कर पा रहा था। रोहन जोर से हंसते हुए बोला, डॉक्टर मर्चेंट मजाक मत करो, पूरी राजवंश फैमिली और बाकी लोग जानते हैं कि अभिमन्यु की वाइफ एब्रॉड में स्टडी कर रही है, तभी तो वो यहाँ नहीं आ पा रही है। तुम उसकी पत्नी कैसे हो सकती हो? ईशिका ने कुछ नहीं कहा, बस वो मन ही मन मुस्कुरा कर रह गई। कुछ ही देर में ईशिका सिंघानिया मेंशन पहुंच चुकी थी। ईशिका ने रोहन को थैंक यू कहा और जल्दी से अंदर जाने लगी। वो बस सिंघानिया फैमिली को मित्तल फैमिली के वहां आने के बारे में बताना चाहती थी। जैसे ही ईशिका ने अंदर लिविंग रूम में कदम रखा किसी ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। ईशिका का गाल दूसरी तरफ झुका हुआ था और वो आदर्श था। एक पल तो ईशिका को कुछ समझ नहीं आया। उसके गाल पर पड़ा थप्पड़ इतना जोरदार था कि ईशिका के होंठ के कोनों से खून बहने लगा था। उसकी आंखें नम हो रही थी, उसका चेहरा दूसरी तरफ झुका हुआ था। आदर्श गुस्से में ईशिका पर चिल्लाकर बोले, तुम्हें शर्म तो बिल्कुल नहीं आती है ना, बार बार अपनी बहन को नीचा दिखाती हो। अगर तुम्हारी वजह से उसका और नक्श का रिश्ता टूट जाएगा तो फिर क्या होगा?
ईशिका ने खुद को कंट्रोल किया और आदर्श की तरफ सख्ती से देखा। उसने अपने हाथ से अपने होठों के कोने का खून साफ कर दिया था। अचानक ईशिका की नज़र आदर्श के पीछे सोफे पर बैठे आयशा पर पड़ी जो जोर जोर से रोए जा रही थी। इन सब में राधिका गुस्से में आदर्श के पास आई और उससे बोली, ये आप क्या कर रहे हैं आदर्श? गलती आयशा की थी और आप ईशिका पर हाथ उठा रहे हैं? आदर्श ने राधिका को जवाब देते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सच्चा है जो भी हो, मेरे लिए सच ये है कि आयशा इस घर की जायज बेटी है और ये लड़की नाजायज। इसे आयशा की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए लेकिन नहीं, इसे तो महान बनना है। जैसे ही आदर्श ने अपनी बात खत्म की, गौतम और राघव अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पर दाखिल हुए। अचानक अपने घर में इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर आदर्श भी घबरा गया था। उसने जल्दी से राधिका का हाथ पकड़ लिया था। कौन हो तुम लोग और इस तरह मेरे घर में इतने सारे गार्ड्स के साथ क्यों घुस आए हो? आदर्श ने सख्ती से पूछा। राघव उन्हें कुछ कहता उससे पहले गौतम आगे आए और उन्होंने राधिका की तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा, तुम तो राधिका मर्चेंट हो ना? राघव यहाँ आयशा को सबक सिखाने के लिए आया था, इसलिए वो काफी सारे गार्ड्स के साथ आया था। जब वो अंदर आए थे तब उनके चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। वहीं इतने सारे लोगों को देखकर आदर्श भी घबरा गया था। आयशा की तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो रो भी सके। डर से उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था। वहीं गौतम मित्तल के अचानक राधिका के नाम लेने पर राधिका की हड़बड़ा गई। उसने कन्फ्यूजन से गौतम की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर गौतम मित्तल? हाँ, मैं ही हूँ गौतम मित्तल, गौतम ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर कहा। फिर उसने इधर उधर देखते हुए कहा, मुझे आज भी याद है, यूनिवर्सिटी में तुम और तुम्हारी बहन के पीछे काफ़ी लोग दीवाने बनकर घूमते थे। किससे शादी की है तुमने? तुम्हें तो काफ़ी सारे शादी के प्रपोज़ल मिले थे। राधिका से बात करते हुए गौतम की नज़र आदर्श पर गई तो वो चुप हो गया और समझ गया कि वही राधिका का पति है। मामला ऑकवर्ड ना हो जाए इसलिए राधिका ने जल्दी से कहा, वो सब तो ठीक है लेकिन तुम यहाँ इतने सारे गार्ड्स के साथ क्यों आए हो? राघव ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, मैं यहाँ आयशा सिंघानिया से मिलने के लिए आया हूँ, मुझे उससे अपने सवालों के जवाब चाहिए। राघव राधिका से थोड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था इसलिए गौतम ने उसे डांटते हुए कहा, तमीज से बात करो राघव, ये तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ी है। उनके कहने पर राघव थोड़ा शांत हो गया और फिर उसने आयशा के बारे में पूरी सच्चाई बताई कि कैसे उसने कियारा को वो सब कहा। मदद तो कियारा की ईशिका ने की थी लेकिन सारा क्रेडिट आयशा ने खुद ले लिया था। पार्टी में जो भी हुआ उसके बारे में भी राघव ने उन सबको बताया। जैसे ही राधिका ने आयशा के बारे में सुना वो हैरान रह गई। आयशा ने कियारा की मदद भी नहीं की, ऊपर से उसे इतना भला बुरा भी कहा। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने इशिका को नीचा दिखाने के लिए उसका क्रेडिट खुद के नाम कर लिया था और नक्श को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सब सुनने के बाद राधिका का सिर चक्कर आने लगा। अचानक ही वो जोर जोर से खांसने लगी। आदर्श ने जल्दी से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, राधिका खुद को संभालो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। राधिका की तबीयत खराब होने की वजह से राघव कुछ कह भी नहीं पाया। वहीं गौतम ने राधिका को समझाते हुए कहा, राधिका तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारी बेटी है, हमें पता नहीं था। ठीक है, अब इस मामले को जाने देते हैं और बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तुम प्लीज रिलैक्स करो। डैड, राघव ने नाराजगी जताते हुए कहा। वो आगे बोलता उससे पहले गौतम ने उसे सख्ती से चुप रहने का इशारा किया। राधिका ने अपनी चेस्ट पर हाथ रखा और खांसते हुए बोली, नहीं, मैं आयशा को समझा दूंगी, आप प्लीज, मैं उसे सजा दूंगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस आराम कीजिए, गौतम ने उसे समझाते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि टेंशन की वजह से राधिका की और भी तबीयत खराब हो, इसलिए उसने राघव का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने लगा। जाने से पहले राघव की नजर इशिका के ऊपर पड़ी तो उसका गाल सूजा हुआ था और होठ के किनारों पर अभी भी हल्का सा खून लगा था। वो लगातार राधिका को देखे जा रही थी। राघव ने कुछ नहीं कहा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। राघव ने वहां तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। गाड़ी में बैठते ही वो गौतम से बोला, डैड, आखिर आपका उस औरत के साथ रिश्ता क्या है जो आपने इस बात को इतनी आसानी से जाने दिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरी मॉम के साथ चीट कर रहे हैं। राघव ने इसे एक अलग ही तरीके से लिया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसके परिवार ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था, तब मैंने ऐसा किया, गौतम ने उसे डांटते हुए कहा, जिस पर राघव ने राहत की सांस ली। गौतम ने अफसोस जताते हुए खुद से कहा, जब तक उसका सामना नहीं किया था तब तक कुछ भी याद नहीं रहा, आज पुरानी बातें ताज़ा हो गईं। क्या हालत हो गई उसकी, जबकि वो इतनी खूबसूरत और अच्छे दिल की थी कि उसे हर कोई अपना बनाना चाहता था। गौतम को राधिका के लिए बहुत बुरा लग रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला का माहौल अभी भी काफ़ी गर्म था। आयशा ने जो भी किया था उस बारे में आदर्श और राधिका को राघव से पता चला था। अब फैसला उन्हीं पर था कि वो आयशा के साथ क्या करते हैं।